आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वैश्विक संकट के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पहली तिमाही में 7.8% की दर्ज हुई वृद्धि। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि 6.9% की गई थी दर्ज। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेल खंड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा नए रेल खंड और रेल कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के विकास को मिलेगी मदद। और प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं। और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है। और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक मजबूत समृद्ध और विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत को चिप निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है। और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है, बहुत जल्दी 50,000-60,000 डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50,000-60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद कल नई दिल्ली में मसौदा सूची को जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97,00,000 से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47,00,000 से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वो 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। कौशाम्बी के पुरामफ्ती थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में कल एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, एयरफोर्स, NDRF और SDRF के करीब 200 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने बताया कि घायलों के उपचार, राहत और बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000-50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2-2 लाख रुपए की राहत राशि और घायलों को 50,000-50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कल बहराइच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेल खंड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इस खंड पर नेपालगंज रोड से वाराणसी सिटी विशेष रेलगाड़ी को भी रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए रेलखंड और ट्रेनों से मिली कनेक्टिविटी प्रदेश में केवल बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत सरकार की ओर से अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के सहयोग के लिए त्वरित कदम उठाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेलखंड की शुरुआत से यात्रियों की आवाजाही अधिक आसान होगी और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के साथ विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गेज परिवर्तन के साथ नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज बड़े रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई।
भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर के कुछ हिस्से, इन सब के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का भी रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस परियोजना से नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 17 जिलों की करीब 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे गंगा के किनारे बसे कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। एसीपी दशाश्वमेध घाट अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं, साथ ही ड्रोन से स्थिति की निगरानी की जा रही है। उधर चित्रकूट में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजापुर और मऊ के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एक रिपोर्ट।
जिले में 24 बाढ़ चौकियां चिकित्सीय स्टाफ और आवश्यक दवाओं के साथ संचालित हैं। एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर हैं, जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और रैन बसेरों में भी मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड रिस्पॉन्स टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जिले में बारिश और जल प्रभाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए आज अवकाश घोषित किया गया है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है जिसकी वजह से जौनपुर और चंदौली में कक्षा 8 तक के विद्यालयों को जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे दोनों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ में दो आरक्षी भी घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा कि यूपी पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल शामली पहुंचकर अंकित के परिजनों से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वैश्विक संकट के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पहली तिमाही में 7.8% की दर्ज हुई वृद्धि। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये वृद्धि 6.9% की गई थी दर्ज। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा नए रेलखंड और रेल कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के विकास को मिलेगी मदद। और प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। We'll be right back.
हैं।